मीर की शायरी अपने समय, समाज और तत्कालीन राजनीतिक हलचलों का काव्यात्मक दस्तावेज है। उनके समय का इतिहास और समाज उनकी वैयक्तिक अनुभूति में ढल गया है। उनका समय मुगलों के पतन, हिंदुस्तान पर नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों और दिल्ली के लूटे जाने का समय है। मीर का दिल और दिल्ली दोनों की दशा एक सी थी, दोनों उजड़े हुए थे। अगर कोई उस पतनशील समाज का काव्यात्मक रूप उसकी सारी शोकपूर्ण गहराइयों के साथ देखना चाहे तो वह उस समय के इतिहास के बजाय मीर की कविताओं में ज़्यादा स्पष्ट रूप से देख सकता है। दिल्ली की बदहाली का दर्द उनके शेरों में इस प्रकार व्यक्त हुआ है। दिल्ली में आज भीख भी मिलती नहीं उन्हें, था कल तलक दिमाग जिन्हें ताजो तख्त का। जो है सो पायाले गम है मीर, चाड़ बेडौल है जमाने की। मीर का व्यक्तित्व अपने युग के साथ घुल मिलकर एक-एक हो गया है। यही कारण है कि उनकी शायरी में दिल और दिल्ली पर्यायवाची बन गए हैं। दिल दिल्ली दोनों लुटे, उजड़े और वीरान हैं। दिल की वीरानी का क्या मजकूर है, यह नगर सोमवार तबाह लूटा गया। दिल वो नगर नहीं कि फिर आबाद हो सके, पछताओगे सुनो हो ये बस्ती उजाड़ के। मीर गजल के उस्ताद शायर हैं। उनके शेर शर के समान हृदय को बेधते ही चले जाते हैं। सीधी सादी बोलचाल की भाषा में इतना रस और इतनी मिठास, इतना विष और इतना कड़वापन, हार्दिक भावनाओं का इतना कोमल चित्रण और भावनाओं का इतना तूफानी जोश काव्य रचना में एक चमत्कार जान पड़ता है। एहतिशाम हुसैन, उर्दू साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पृष्ठ 58। उनकी गज़लों का केंद्रीय विषय प्रेम और सौंदर्य है। उनके प्रेम का विस्तार व्यक्ति से लेकर खुदा तक है। प्रेमिका से प्रेम, मानव जाति से प्रेम और ईश्वर से प्रेम, तीनों उनके यहाँ घुले मिले हैं। इसी प्रकार उनकी प्रेमिका का सौंदर्य प्रकृति के सौंदर्य में भी व्याप्त है। उसके शरीर की बनावट फूल की पत्ती से है। उसका मुंह खुलने से चांदनी छिटकती है। कलियों ने कम कम खिलना उसकी अधखुली आँखों से सीखा है। फूल की डालियों ने उसके कद से अंगड़ाइयाँ लेने का ढंग धारण किया है। उसकी पवित्रता और कोमलता की यह स्थिति है कि शरीर हाथ लगने से मैला होता है। अली सरदार जाफरी, दीवाने मीर, पृष्ठ 277, पृष्ठ संख्या 11। उसके होठ गुलाब की पंखुड़ी की तरह नाजुक हैं और उसकी आँखों की मस्ती शराब की सी है। उसकी अदा सबसे निराली है, वह सर्वोत्तम है। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। मीर उन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। मीर प्रेम के असाधारण कवि हैं। उनका प्रेम वैयक्तिक तो है ही, लेकिन जब वह अपने उदात्त रूप में होता है तो पूरी कायनात उसके दायरे में आ जाती है। इश्क उसके लिए सबसे बड़ी भावना है और दिल सबसे बड़ी वस्तु। अगर मंदिर और मस्जिद टूट जाएं तो फिर बन सकते हैं, लेकिन दिल वो नगर नहीं कि फिर आबाद हो सके। इसलिए वह सबसे दिल को तोड़ने और उजाड़ने से रोकते हैं। पछताओगे सुनो हो ये बस्ती उजाड़ के। मीर ने जिससे प्रेम किया है उसे उसकी कोई परवाह ही नहीं, जबकि सारी दुनिया को इसका खबर हो गई है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जो गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। और यह एक ऐसी बीमारी है कि कोई दवा काम ही नहीं करती। लगा था रोग जब से ए तभी से असर मालूम था हमको दवा का। मीर अनुभूति प्रवणता के शायर हैं, और अनुभूति जब बहुत घनीभूत होती है तो उसे व्यक्त करना असंभव सा हो जाता है। यह बात हमें हिंदी के कबीर, तुलसी, घनानंद आदि कवियों में भी देखने को मिलती है। मन की गहराइयों में जो इच्छाएं होती हैं उन्हें कहना संभव नहीं होता। दिल की तह की कही न जाती, नाजुक है असरार बहुत, अक्षर तो हैं इश्क के दो ही लेकिन है विस्तार बहुत। इस शेर में उन्होंने प्रेम की गहराई और विस्तार पर भी प्रकाश डाला है। इस प्रेम के लिए कवि को हिंदू मुस्लिम दोनों बनना पड़ा, लेकिन कोई बात न बनी। काफिर मुस्लिम दोनों हुए पर निस्बत उससे कुछ न हुई। बहुत लिए तशहीब फिरे हम, पहना है जुन्नार बहुत। पृष्ठ संख्या 12। हिज्र ने जी ही मारा हमारा, क्या कहिए क्या मुश्किल है, उससे जुदा रहना होता है जिससे हमें है प्यार बहुत। मीर ने प्रेम की तड़प, बेचैनी और दर्द के अत्यंत मार्मिक चित्र प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें पढ़कर किसी भी संवेदनशील पाठक का दिल तड़प उठता है। वह सूरते इलाही किस देश बस्तियां हैं, अब जिनके देखने को आंखें तरसतियां हैं। मीर को बचपन में अपने सूफी और फकीर पिता से जो उदारता और प्रेम की तालीम मिली थी, उसकी झलक उनकी शायरी में भी मिलती है। कभी सारी कायनात में उन्हें ईश्वर दिखाई देता है, कभी हर चिराग में उसी का प्रकाश, कभी बेखुदी का आलम है और कभी पानी के बुलबुलों सी जीवन की क्षणभंगुरता व नश्वरता। कुछ शेर देखें, उसके फरोगे हुस्न से झमके हैं सब में नूर, शमाए दृश्य हो या कि दिया सोमनाथ का, हस्ती अपनी हवाब की सी है, ए नुमाइश सुराब की सी है, बेखुदी ले गई कहाँ हमको, देर से इंतजार है अपना। मीर की शायरी का अभिव्यक्ति पक्ष भी बहुत खूबसूरत है, उसमें सादगी, मृदुलता, रवानी और संगीतात्मकता का अद्भुत संयोग है। उनका काव्य सरल और सुगम है, किंतु इसका मतलब यह नहीं कि उनकी कविता में कलात्मक सौंदर्य का अभाव है। इसके विपरीत वास्तविकता यह है कि उनकी ध्वनि और संगीत के प्रति रुचि बहुत विकसित और उन्नत है। उनका काव्य बोलचाल की जवान में बातचीत का अंदाज लिए हुए है। फारसी शब्दों के उपयोग में भी उन्होंने हिंदुस्तानी लवो लहजे को वरीयता दी है। उनकी गजलों का तरन्नुम भी अवामी स्वर के बहुत निकट है। जब मीर अपने आवेगों की अभिव्यंजना करते हैं, ऐसे आवेग जिन्हें जिन्हें व्यक्तिगत रूप से उन्होंने अनुभव किए हैं, तो उनकी पंक्तियों में एक आश्चर्यजनक सादगी पाई जाती है। सीधे सीधे छोटे छोटे कोमल शब्दों में वह अपनी अछूती अनुभूतियों तथा भाव प्रवणता को सफाई के साथ संवेदनशील ढंग से समग्र रूप में बयान करते हैं, और उनके शेरों में ऐसी स्वर लहरी होती है मानो उसमें संगीत की आत्मा आबसी हो। वह इन मामूली शब्दों में ऐसा जादू भर देते हैं कि उससे दिल पर गहरा असर होता है। प्रोफेसर कलीमुद्दीन, उर्दू कविता पर एक दृष्टि, पृष्ठ 64। पृष्ठ संख्या 13। उनके विषय में फिराक गोरखपुरी की मान्यता है कि मीर के उत्तम शेर जादू का असर करते हैं। ऐसी रचनाओं में उनका स्वर जीवन का स्वर बन जाता है। इन रचनाओं में जैसी धुलावट है, जैसा चमकार है, जो करुणा है, जो मानवता, जो विनम्रता है, जो स्वाभाविकता है, और जो हृदय को विदीर्ण करने वाली मृदुलता और तीव्रता का संगम है, उनका उदाहरण कहीं और नहीं मिलता। उर्दू भाषा और साहित्य, पृष्ठ संख्या 29।